भागवत सार की श्रृंखला में सातवें स्कंद के 11वें अध्याय पर चर्चा आगे करेंगे। इसके एक श्लोक को दोहराइए। स्त्रीनां च पति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्वन्धुषुन् वृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीनां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीनां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां स्त्रियों का च भी पति देवानां जिन्होंने अपने पतियों को पूज्य मान रखा है तत् शुश्रूषा अपने पति की सेवा करने में तत्परता अनुकूलता अपने पति के प्रति अनुकूल रहना तद्बंधुषु पति के मित्रों तथा संबंधियों में अनुवृत्ति ही उसी प्रकार अनुकूलता पति के संतोष के लिए उनसे भी सद्व्यवहार करना च तथा नित्यम नियमित रूप से तद्व्रत धारणम पति के व्रतों को स्वीकार करते हुए अथवा पति के अनुसार कर्म करना। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना, तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये चार नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। तात्पर्य, एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती हैं। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर हिप्पी हैं, जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा भेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचो चतह कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्णा। तो 11वां अध्याय 7वें स्कंद का वर्णाश्रम पद्धति का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं नारद मुनि। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न जानना चाहते थे धर्म के सिद्धांतों को और वर्णाश्रम धर्म विशेषतः। तो नारद मुनि ने 8 से श्लोकों को 12वें श्लोक तक धर्म के 30 सिद्धांतों को दिया और ये कहा कि ये सब मनुष्यों को पालन करने चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन 30 नियमों का पालन नहीं करता या इन 30 गुणों को उत्पन्न नहीं करता तो वो मनुष्य है ही नहीं। तो हम लोग ये 30 गुण पढ़ चुके हैं। अब आगे 13वें श्लोक से वर्णाश्रम धर्म का पालन उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का वर्णन नारद मुनि ने करना शुरू किया, प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने अलग अलग वर्णों के बारे में उनके कार्यों को पहले बताया, ब्राह्मण के कार्य क्या हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, फिर उनके लक्षणों को बताया कि उनके लक्षण क्या हैं, कैसे उन्हें किस चीज से उनको जान सकते हैं। इतनी चर्चा हम लोग इस अध्याय में कर चुके हैं। तो विशेषतः उन 30 गुणों को आप लोग स्मरण रखिए क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि अगर 30 गुण नहीं है तो मनुष्य है ही नहीं, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि वो 30 गुण लाएं। नारद मुनि ने कहा, प्रभुपाद ने कहा, तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो अब आगे नारद मुनि ने जब ये वर्णों के कार्य अभी वर्णों के किए हैं, आश्रमों की ओर नहीं गए हैं, आश्रमों में अगले अध्याय में जाएंगे, तो वर्णों के उन्होंने वर्णन कर दिए, उनके लक्षणों का वर्णन कर दिया। अब वो वर्णन कर रहे हैं स्त्री का, एक पतिव्रता स्त्री का। तो प्रश्न आता है कि वर्णों का वर्णन हो रहा था कि कौन ब्राह्मण वैश्य शूद्र इत्यादि हैं, तो अचानक नारद मुनि ने पतिव्रता स्त्री का वर्णन क्यों किया, ये विषय कहां से आ गया? प्रश्न तो नहीं किया था युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछा था। तो वर्णों को बता दिया, कार्यों को बता दिया, लक्षण को बता दिया, अब आगे आश्रमों को बता सकते थे, तो उन्होंने क्यों अचानक बीच में स्त्री, पतिव्रता स्त्री का वर्णन करने लग गए? क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये थी कि नारद मुनि ने अभी जिन वर्णों का संक्षेप में वर्णन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अलावा भी वर्ण हैं, कई वर्ण हैं जो इन चारों वर्णों में नहीं आते हैं। इनके अलावा कई ऐसे जातियां हैं जो इन वर्णों में नहीं आती हैं, तो उनका वर्णन भी नारद मुनि करने वाले हैं, लेकिन वो जातियां कैसे उत्पन्न होती हैं उसका वर्णन करने के लिए उन्होंने स्त्रियों की पतिव्रता का वर्णन किया। क्योंकि जब स्त्रियां अपने धर्म को त्याग देती हैं तो मिश्रित वर्ण उत्पन्न होते हैं या निम्न वर्ण उत्पन्न होते हैं या वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए कि किस तरह पतिव्रता स्त्री के क्या कर्तव्य हैं, नारद मुनि कुछ श्लोकों में अब पतिव्रता स्त्री का वर्णन करने वाले हैं। तो पतिव्रता स्त्री का वर्णन इस श्लोक में जैसे प्रारंभ किया, 4 नियम बताए कैसे पतिव्रता स्त्रियों को रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति के अनुकूल भाव में सेवा करें, उनके मित्रों को, उनके जो बंधु बांधव हैं उनको भी अनुकूल भाव में सेवा करें इत्यादि। तो ये नियम बताए उन्होंने और आगे के श्लोकों में और नियम बताए जाते हैं। आज के समय में अगर हम लोग ये चर्चा करते हैं कि पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए, तो समाज में रहने वाले लोग सोचते हैं कि ये तो पक्षपात है, ये सही नहीं है। विशेषता ऐसे लोग जो नारी मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं, नारी समानता की बात करते हैं, कि सब कुछ समान होना चाहिए, ये नियम पुरुषों के लिए और ये नियम स्त्रियों के लिए, ऐसा क्यों है? हमें सब समान चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस समाज में वही लोग स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। समान नियम सब जगह नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण है, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखें तो सभी जीवात्माएं हैं, और जब सभी जीवात्माएं हैं, ये हम सब जानते हैं कि जीवात्माएं अलग अलग शरीर धारण करती हैं, लेकिन है सब आध्यात्मिक दृष्टि से एक ही स्तर पर, सारी आत्माएं भगवान का अंश हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो फिर हमें भेद क्यों करना चाहिए? दूसरी चीज, भगवान के जब हम अंश हैं और हम ये जानते हैं कि आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में भगवान के अंश के रूप में रहते हैं, और इस जगत में ये जो शरीर हैं ये तो बदलते रहते हैं, फिर क्यों भेद करना इस बदलते हुए शरीर के आधार पर? आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखना है, समान अवसर देना है, फिर क्यों नियम लगाए जाते हैं वेदों में कि पुरुष ये करेंगे, स्त्रियां ये करेंगी? इसको समझना है। भले ही हम सब आत्मा की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से समान हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने मूल स्वरूप में पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये भी हम नहीं जानते। आज हमें पुरुष का शरीर मिला है या किसी को स्त्री का शरीर मिला है, लेकिन मूल स्वरूप में हो सकता है कि वो स्त्री ना हो, वो पुरुष ना हो, फिर हमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम समान हैं, जब हम एक शरीर धारण करते हैं इस भौतिक जगत में, तो शरीर अलग अलग धारण करते हैं और अलग अलग शरीरों के अलग अलग आचरण होते हैं, उसको हमें स्वीकारना चाहिए। जैसे चींटी का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, पशु का शरीर है, हम उसको पशु की तरह ही रखते हैं, उसका आचरण मनुष्यों की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं पशु जाकर ऑफिस में कार्य करते हैं और धन कमाते हैं? लोग क्यों नहीं कहते ये तो गलत है, ये पशुओं के प्रति पक्षपात है, अन्याय है पशुओं के प्रति? नहीं अन्याय है, उन पशुओं का वो कार्य है, उन पशुओं को वो शरीर मिला है। तो जब शरीर अलग अलग हैं तो कार्य भी अलग होंगे। एक हाथी का जो शरीर मिलता है वो चींटी का कार्य नहीं कर सकता, और चींटी हाथी का कार्य नहीं कर सकती, ये तो हम सब जानते हैं। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि चींटी और हाथी को समान अवसर देना चाहिए? जितना बोझा एक हाथी खींचता है उतना ही बोझा चींटी को खींचना चाहिए? हो नहीं सकता। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। तो जब इस बात को स्वीकार करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जो पुरुष और स्त्री का शरीर की रचना अलग अलग है, उनके अंदर दिए गए गुण अलग अलग हैं, तो इसीलिए उनके कार्य भी, उनका आचरण भी अलग दिया गया है। ये बड़ी सरल चीज है समझने के लिए, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हाथी 1000 किलो का वजन खींचता है और चींटी केवल आधा किलो भी नहीं ले जा सकती, तो ये पक्षपात है। पक्षपात नहीं है, वो उसकी शरीर की संरचना है। और अगर हम चींटी को 1000 किलो वजन खींचने के लिए कहें तो ये अन्याय है, ये पक्षपात है। सही है ना? चींटी जितना खींच सकती है, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम जो भी है, चींटी को वही देना चाहिए। लेकिन हम चींटी से आशा करें कि उसको 1000 किलो खींचना है, ये अन्याय है। इसी तरह पुरुष और स्त्री के जो कार्य दिए गए हैं, तो पुरुष को आशा करना कि वो स्त्री के कार्य करे या स्त्री को आशा करना कि वो पुरुषों के कार्य करे, ये अन्याय है। इसीलिए दोनों को अलग अलग कार्य देना अन्याय नहीं है, दोनों को समान मानना उनके ऊपर अन्याय होगा। जैसे हाथी और चींटी को समान मानना अन्याय होगा। तो इसीलिए शास्त्रों में अलग अलग कार्य दिए गए हैं, और विशेषतः स्त्रियों के लिए यह कहा गया है कि उनको शुरुआत में, जब तक उनका विवाह नहीं होता, उनको संरक्षण अपने पिता के अधीन रहकर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को सदैव संरक्षण में रखना चाहिए, ये उनके सम्मान की बात है। अगर कहा जाता है कि हमेशा इसको संभाल कर रखना है तो किस चीज को संभाल कर रखने के लिए कहा जाता है? किसी महत्वपूर्ण चीज को। हम किसी हीरे को देते समय कहते हैं इसको संभाल कर रखना है, हम किसी पत्थर को देते हुए नहीं कहते कि ये पत्थर जरा संभाल के रखना, मैं ऐसे रास्ते में चल रहा था मिल गया, इसको संभाल कर रखो। नहीं, किसी हीरे को, सोने को, जो मूल्यवान चीज है उसको कहा जाता है संभाल कर रखना। तो जब शास्त्रों में कहा जाता है कि स्त्रियों को संरक्षण देना है, क्यों? बड़ी मूल्यवान चीज है, उनके मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, उनको नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। इसीलिए शास्त्रों को जब गलत दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है तो ये माना जाता है कि शास्त्र स्त्रियों के विरुद्ध है। शास्त्र तो स्त्रियों को बहुत बड़ा मान देते हैं, उनके सम्मान को बढ़ाया जा रहा है ये कह के कि सदैव संरक्षण में रहें। मान लीजिए कि भगवान स्त्री को देते समय कह रहे हैं कि इसको बड़ा संभाल कर रखना, हीरा है, मूल्यवान चीज है, तो इससे तो स्त्रियों का मान बढ़ता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों को सदैव संरक्षण में रखना चाहिए। तो जब विवाह नहीं हो तो पिता के संरक्षण में रहें, जब विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में रहें, और जब पति की मृत्यु हो जाए या पति संन्यास ले ले तो फिर अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहें। ये नियम है। तो कभी भी उन्हें बिना संरक्षण के नहीं रखना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? स्त्रियों का बड़ा महत्व है समाज में। तो उनको अर्धांगिनी कहा जाता है, जब वो पति को स्वीकार करती हैं तो उनको अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है पति का, साथ ही साथ पति की जिम्मेदारियों में आधी जिम्मेदारी वो उनको ग्रहण करती हैं। तो अर्धांगिनी है, आधी जिम्मेदारी ले रही हैं, तो फिर कहां उनके महत्व को कम कर दिया? जब हम स्त्रियों को समान बात कहते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार होने चाहिए तो शास्त्र ने दिया है, इसीलिए अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग, एक चौथाई अंग नहीं कहा गया, अर्धांगिनी, आधा अंग है, आधी जिम्मेदारियों को लेती हैं वो पति की। ये पति की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बड़ा करे, ये पति की जिम्मेदारी है कि बच्चों का संरक्षण करे, ये पति की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन वो जिम्मेदारी पत्नी लेती है पति की, आधी जिम्मेदारी, इसीलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये क्या स्त्रियों को कहा जाता है घर में रहो और पति जाकर काम करे। अर्धांगिनी है, आधा काम वो कर रही हैं, आधा ये कर रहे हैं, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उन्हें पतिव्रता होना चाहिए। तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए जो नियम दिए गए नारद मुनि इन श्लोक में और आगे के श्लोक में कहते हैं, तो सबसे पहला कि उन्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा में जीवन बिताना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, पतियों को, पत्नियों को जब हम कहते हैं कि पतिव्रता होना चाहिए तो ये नहीं है कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं। पत्नियों में केवल पतिव्रता का पालन करके बड़ी शक्ति आती है, इसके कई उदाहरण हैं। मंदोदरी ये पतिव्रता स्त्रियों के उदाहरण है, हालांकि रावण की पत्नी है लेकिन रावण ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में कि जहां पतिव्रता स्त्रियों की बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पतियों ने स्वीकार नहीं किया अहंकार में, तो उनका नाश हुआ। रावण इसका एक उदाहरण है। मंदोदरी ने बहुत समझाया था, इतनी पत्नियां हैं तुम्हारे, और मंदोदरी स्वयं बहुत सुंदर थी। इसका भी वर्णन किया गया है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं सीता को ढूंढने के लिए, रात्रि के समय वो हर कमरे में, हर महल में जाकर ढूंढ रहे हैं कि कहीं सीता कहां है, तो मंदोदरी के जब महल में आए तो उन्हें लगा यही सीता है, क्योंकि इतनी सुंदर और कोई नहीं हो सकती। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, तो मंदोदरी ने समझाया था रावण को क्या कमी है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसने कभी कोई सुंदर स्त्री ही नहीं देखी, जिसका विवाह नहीं हुआ, कोई पत्नी नहीं है, वो अगर पीछे भाग रहा है, यह रावण की इतनी पत्नियां हैं और एक से एक सुंदर, तो क्यों इतने काम वासना के पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो सीता को, वापस ले आओ सीता को। मंदोदरी ने समझाया था, रावण ने सुना नहीं, नाश हुआ उसका। धृतराष्ट्र को गांधारी ने समझाया था, गांधारी भी पतिव्रता स्त्रियों में उनकी श्रेणी में आती है। गांधारी ने समझाया धृतराष्ट्र को, बंद करवा दो ये सब, धृतराष्ट्र ने सुना नहीं, नाश हुआ। तारा ने वाली को समझाया था, वाली की पत्नी थी, तो उनको समझाया था कि आप जिससे युद्ध करने, ये सुग्रीव आकर युद्ध के लिए बार बार आपको पुकार रहा है, सुग्रीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे है, आप सुन लीजिए, मत जाइए, नाश होगा। वाली ने सुना नहीं, मरना पड़ा। तो स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की पतिव्रता की शक्ति बहुत होती है अगर वो अच्छी तरह, तो ये जो नियम दिए गए हैं ये उनको शक्तिशाली बनाने के लिए। ऐसी कई स्त्रियों के बारे में हम लोग सुन चुके हैं। अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले जब रामायण पर चर्चा प्रारंभ की तो देवी अनुसुईया के विषय में सुना, और उस स्त्री के विषय में जिसके पति को कोढ़ हो गया था, जिसने सूर्य की गति को रोक दिया, हम लोगों ने सुना। तो स्त्रियों में शक्ति आती है पतिव्रता धर्म का पालन करने की। तो इन श्लोकों में जो वो नियम दे रहे हैं, जैसे उन्होंने इनमें चार दिए कि सेवा करनी चाहिए, अनुकूल भाव से पति की तरफ होना चाहिए, उनके बंधु बांधवों को भी उसी तरह, और पति के जो व्रत हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर पति कोई व्रत लेते हैं तो पति के व्रतों में उनको सहयोग करना और उसका पालन करना, विरोध नहीं करना। और जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे कि झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में। चाणक्य पंडित कहते जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता वहां श्री अर्थात लक्ष्मी देवी स्वयं आती हैं। तो देखिए, लोगों को अगर पैसा कमाना है तो बस घर में झगड़ा बंद कर देना चाहिए, सिंपल चीज है ना। घर में झगड़ा बंद होगा लक्ष्मी देवी अपने आप आएंगे। कितना वो लोग पैसे कमाने के लिए तकलीफ लेते हैं बाहर, फिर घर में आते हैं पत्नी से झगड़ा करते हैं, तो ना बाहर की मेहनत से पैसा आता है ना घर में। आ सरल चीज, घर में झगड़ा बंद कर दे, दोनों प्रेम से रहें, श्री अपने आप आ जाएगी। ये चाणक्य पंडित ने कहा, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं यहां पर, तो इसलिए सत्य होगा। तो आप में से जो गृहस्थ हैं वो लोग प्रयास करें कि इस चीज का पालन करके देखें लक्ष्मी आती है कि नहीं, विश्वास के साथ आ जाएगी, है ना, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो इसी तरह उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ साथ पत्नियों के लिए कहा गया है कि घर को, घर के कार्यों को बहुत अच्छी तरह रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, पति से मधुर बातचीत वे करें। ऐसे कई नियमों को वो यहां पर दे रहे हैं कि कैसे उनको अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें धार्मिक सिद्धांत पते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस स्त्रियां कोई धर्म का पालन नहीं करें या पति करेंगे, तो स्त्रियों को धर्म का पालन, धर्म के नियमों को पता होना चाहिए कि धर्म के नियम क्या हैं, उनको बहुत अच्छी तरह उन्हें पालन करना चाहिए। साथ ही साथ एक कर्तव्य जो बच्चों को बड़ा करना, अर्थात बच्चों को प्रेम देना, बच्चों को शिक्षाएं देना, उनका पोषण करना, ये भी एक स्त्री के लिए नियम है। तो जब हम लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो फिर उस समय कैसे एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा कर सकती है, क्या रक्षा कर सकती है। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में जहां पुरंजन की कथा, पुरंजन उपाख्यान हम लोग सुन चुके हैं, तो पुरंजन की कथा आती है, वहां श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पत्नी ये एक कमांडर की तरह है, दुर्ग को रोकने वाले, दुर्गा, दुर्गा यानी दुर्ग को जो संभालती है। तो इस शरीर को, शरीर की तुलना एक दुर्ग से की गई, दुर्ग यानी एक किला, किला होता है ना जिसमें राजा रहता है तो फिर वो लोग आक्रमण करते हैं, तो इस शरीर की तुलना एक दुर्ग से की गई है। और इंद्रियां जो आक्रमण करती हैं वो दस्यु की तरह है। दस्यु मतलब जो किले पर आक्रमण करके किले को जीतना चाहते हैं, धन ले जाना चाहते हैं, तो उन दस्यु से इंद्रियों की तुलना की गई है। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति आक्रमण करता है दुर्ग पर, जो दुर्ग का कमांडर होता है वो दुर्ग को, किले को संभालता है, उसको आक्रमण नहीं होने देता। इसी तरह एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा करती है जब पति इंद्रियों के द्वारा विचलित हो जाता है, जब इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर पत्नी सही तरह से उस समय रक्षा ना करे पति की तो फिर समाज में बहुत अवैध चीजें फैल जाएंगी, पुरुष जो है वो जाकर कई अवैध कार्यों में लग जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि पत्नी सदैव एक दुर्गा के समान, एक कमांडर के समान पति की रक्षा करे, तो ये आवश्यक है। क्योंकि जब इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं कुछ उम्र तक, और फिर हाँ जब व्यक्ति 50 का हो जाए तब उसको फिर घर को त्याग देना चाहिए, तब उसको कमांडर के साथ बने नहीं रहना चाहिए कि हाँ प्रभुपाद ने कहा है कमांडर है वो संभालेगी, वो हो गया 50 की उम्र तक, बाद में फिर भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। इसका नियम यह है क्योंकि उस समय तक इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली होती हैं, और उस समय अगर व्यक्ति सही मार्ग पर ना हो तो गलत मार्ग को चुन सकता है, लेकिन 50 के बाद फिर बहुत ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। जो लोग 50 के नहीं है वे भी ध्यान से सुने, और जो 50 के ऊपर है वे भी ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग इन चीजों को सुनते हैं और सुन के सोचते हैं ये शास्त्र के लिए है, शास्त्र में कहा है कि 50 साल के बाद फिर 51 वन में चले जाना चाहिए। वो ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा, कल को आप में से बहुत से लोग प्रचारक बनेंगे, तो जो गृहस्थ हैं वो भी प्रचारक बनेंगे और वो भी जाकर इसी बात को कहेंगे 50 के बाद हमें त्याग देना चाहिए, लेकिन खुद पालन करेंगे तब लोगों पर प्रभाव होगा। तो इन चीजों को जैसे बारंबार हम कहते हैं भागवत में आते हैं तो सीखिए, तो जो अभी गृहस्थ बने उनको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, जिस दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि 50 के बाद मुझे संन्यास लेना या वन में जाना, तब तो जीवन बड़ा अच्छा चलेगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ होगा तो व्यक्ति सोचेगा बस अभी 10 साल बाकी है, क्या फर्क, ठीक है जो इसको करना है करने दो, 10 साल बाद 15 साल बाद चले जा, है ना, झगड़ा नहीं होगा। तो जिस दिन विवाह हो उसी दिन निश्चय कर लेना चाहिए कि ठीक है आज मेरा विवाह हुआ है, ये तारीख याद रखूं, 50वें वर्ष जन्म की भी तारीख याद रखूं, तो जो भी है आज से 25 साल बाद जो भी समय बचा है तो ये मेरा वनवास का समय है। तो अगर कुछ होगा, छोटा मोटा कुछ होगा, तकलीफें आएंगी, धन की तकलीफ आएगी, इसकी आएगी, व्यक्ति 5-10 साल और है निकाल लेता, उसके बाद तो फिर शांति। तो ये भी नियम पालन होने चाहिए। तो ऐसे कई नियम पतिव्रता स्त्रियों के लिए दिए गए हैं, और भीष्म देव भी बहुत विस्तार से स्त्री धर्म का जो वर्णन करते हैं, जब वो बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने बड़े विस्तार से कई धर्मों का वर्णन किया, राज धर्म का वर्णन किया, स्त्री धर्म का वर्णन किया कि कैसे राजा को रहना चाहिए, कैसे स्त्रियों को रहना चाहिए, समाज में कैसे सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्त्री धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के लिए बड़ा सरल है, लोग कहते हैं कि स्त्री धर्म कठिन है, वो बोलते हैं बड़ा सरल है, पति को सारे यज्ञ करने हैं, सारी मेहनत करनी है, शास्त्र पढ़ना है, मंत्रोच्चारण करना है, पत्नी को केवल उसकी सेवा करनी है। भीष्मदेव कहते हैं बस और कुछ नहीं, उनकी सेवा करने से सारा लाभ मिल जाता। तो आज के समय में हमें प्रामाणिकता कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पति को अपना जो नियम है, अपने जो कार्य हैं, हर कार्य को आध्यात्मिक गुरु से पूछकर करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना चाहिए पत्नी और पति को, और तब वो जब कार्य करेंगे तो उनका जीवन सुखी होगा। तो कभी भी उन्हें भक्ति में जब हम लोग आ जाते हैं तो साधारणतः हम ये मानते हैं कि कभी कभी कुछ भक्ति की बात करनी हो तो हमें गुरु से पूछ लेना चाहिए, बाकी सारा हमारा जीवन हमारा। प्रभुपाद कहते नहीं, हर कार्य को निर्देश में लेकर करें, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में जब कार्य किए जाते हैं तो भक्ति में प्रगति होती है और अंत में दोनों पति और पत्नी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो ऐसे ये दाम्पत्य जीवन है, और पत्नियों के लिए जो वर्णन किया गया, अब वो वर्णन करने के बाद जब वो ये सब चीजें बता देते हैं, बहुत से उन्होंने नियम दे दिए, कैसे उनको धार्मिक सिद्धांतों में लगे रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए इत्यादि, घर को साफ रखना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, धार्मिक सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो ये नहीं कर पाते, अर्थात जहां पतिव्रता स्त्रियां नहीं होती, तो इसके विरुद्ध भी, इसके आगे भी है युधिष्ठिर, अब वर्ण संकर को सुनो। तो अब वो बताने लगे कि जो वर्ण संकर होते हैं, अर्थात मिश्रित वर्ण, मिले जुले वर्ण, उनका वो वर्णन करते हैं। मतलब तो चार वर्ण हो गए, अब उनके आगे क्या है, तो ऐसे कई मिश्रित वर्णों का भी वो वर्णन करते हैं। तो वर्ण संकरों का वर्णन भगवद गीता में भी अर्जुन करते हैं कि वो जब कहते हैं स्त्रीसु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकर, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अर्थात वो अपने पतिव्रता धर्म को त्याग देती हैं, तो फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित मतलब जिनको कोई चाहता नहीं है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि पाश्चात्य जगत का वो वर्णन कर रहे थे, जैसे उन्होंने ज्यादातर लिखते समय उसका, जैसे इस अध्याय में, इस तात्पर्य में भी हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद ने कहा वर्ण संकर मतलब हिप्पी तो हिप्पी जो वहां के हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कोई नियम पालन नहीं करना है, तो ऐसे लोगों को वर्ण संकर कहा जाता है। मतलब अगर जो नियम पालन नहीं करते हैं। दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि पता नहीं कौन क्या है, वो भी वर्ण संकर व्यवस्था है। तो एक वर्ण संकर व्यवस्था जहां कोई नियम का पालन नहीं करते, दूसरी वर्ण संकर व्यवस्था जहां पता ही नहीं है कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है, सब ऐसे ही चल रहा है, ये भी वर्ण संकर। तो मिश्रित वर्णों का वर्णन करते हुए अब वो वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में दो प्रकार के विवाहों को समझाते हैं, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह, या जो संतानें उत्पन्न होती है, अनुलोमजा प्रतिलोमजा, अर्थात प्रतिलोम विवाह से और अनुलोम विवाह से जन्मी हुई संतानें। तो जब पत्नी ऊंचे वर्ण की हो और पति नीचे वर्ण का हो, तो फिर ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है, या फिर पत्नी जब नीचे वर्ण की हो, पति ऊंचे वर्ण का हो, तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। तो अर्थात एक ठीक है एक सही नहीं है। तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन करते हैं। और भीष्म देव महाभारत में जब ज्ञान दे रहे हैं, तो बड़े विस्तार से उन्होंने वर्ण संकरों का वर्णन किया कि वर्ण संकर क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, पूरा अध्याय एक उस पर उन्होंने बोला। तो वे बताते हैं कि जब स्त्री ब्राह्मण कुल की हो, तो उससे जब क्षत्रिय विवाह कर ले या वैश्य विवाह कर ले या शूद्र विवाह करे, तो जो संतान उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है। तो वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण कुल की स्त्री से शूद्र विवाह करता है, तो जो संतान उत्पन्न होती है उसको चांडाल कहा जाता है, वो चांडाल है। चांडाल मतलब आप जानते हैं, हम लोग कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चांडाल एकदम नीचे गया हुआ व्यक्ति, तो उसको चांडाल माना जाता है। और अगर एक वैश्य वो ब्राह्मण कुल की स्त्री से विवाह कर लेता है, तो उससे जो जन्म लेते हैं उसको वैदेहक कहा जाता है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो महल में रानियों के कमरे इत्यादि हुआ करते थे, उनकी रक्षा, उनको संभालना, साफ सफाई रखना करते थे। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण कुल की स्त्री से विवाह करता है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको सूत कहते हैं। ये शब्द आपने सुना है, सूत, तो वो सूत कहे जाते हैं। सूत मतलब जैसे सूत, श्री सूत उवाच, हम लोग पढ़ते हैं ना सूत जी। तो सूत जो होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, या तो ये रथ इत्यादि चलाते हैं, या फिर कभी कभी सूत पुराणों के वाचक को भी कहा जाता है। तो ये जो सूत जाति है, ये प्रकट होती है जब एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कुल की स्त्री से विवाह करता है। तो ऐसे ये सारे वर्णों से परे आते हैं। और अगर समझ लीजिए स्त्री ब्राह्मण कुल की नहीं है, वो निम्न कुल की है, अर्थात वो क्षत्रिय कुल की है, और उससे कोई वैश्य और शूद्र विवाह करते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है। तो जब एक क्षत्रिय कुल की स्त्री से कोई वैश्य विवाह करता है, अर्थात वैश्य है और उसने क्षत्रिय कुल की स्त्री से विवाह किया, तो उससे जो उत्पन्न होते हैं उनको वंदी जन कहा जाता है, या मगध कहा जाता है। वंदी जन ये लोग गाते बजाते हैं। आप जानते हैं जब युद्ध भी होता है तो युद्ध में एक टोली चलती जिसको वंदी जन कहते हैं। वंदी वंदी मतलब वो गाना बजाना, कभी कभी राजा को सुबह उठाने के लिए वो लोग जाते हैं, राजा सो रहे हैं तो सुबह जाकर राजा का गुणगान करके उठाते हैं कि आप बड़े महान हैं, अब आप उठिए, कितना अच्छा है ना। आप सो रहे हैं और सुबह सुबह कोई आकर बोलता, आपकी महानता का गुणगान करता है कि आपने ये किया, आपने उस राजा का वार किया, आप बड़े महान हैं, प्रजा आपका इंतजार कर रही है, अब आप उठिए। और फिर आप आंख खोलते हैं, राजा लोग ऐसे ही हुआ करते थे। तो इनको वंदी जन कहते हैं जो वंदना करते हैं। और इन लोगों को युद्ध में भी ले जाया जाता था। तो युद्ध में जाते थे किस लिए? मनोरंजन करने के लिए। अभी सैनिक हैं, युद्ध करके आए हैं, थके हुए हैं, चोट लगी हुई है, तो शाम को उनका मनोरंजन किया करते थे, उनको कुछ गाना बजाना, उनको कुछ सुनाते थे। और ये नियम था कि युद्ध में कभी वंदी जनों को मारा नहीं जाता था। इसीलिए महाभारत के युद्ध के बाद महाभारत की गाथाओं को दूर तक पहुंचाया नहीं वंदी जनों ने, क्योंकि अकेले जब गए तो पहुंच नहीं पाए। उनको संरक्षण दिया जाता था सैनिकों के साथ कि ये चलेंगे, क्यों जरूरी है, सैनिकों का मनोरंजन नहीं होगा बेचारे कैसे अगले दिन युद्ध करेंगे। तो वो लोग मनोरंजन करते थे उनकी सुना के कि आज युद्ध में आपने इतना शौर्य दिखाया, इतना वीर दिखाया, कल तो आप निश्चित युद्ध जीत जाएंगे। ये गानों में गाते थे। तो हाँ, आज भी होते हैं ना देशभक्ति के गीत सैनिकों को सुनाए जाते हैं। याद नहीं आ रहा कोई देशभक्ति का गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो उसको मार देंगे, या जो भी है सुनाकर उनको जोश लाया जाता है ना, तभी तो उनको जोश आ जाता है। हाँ ठीक है, कल जाकर फिर से लड़ेंगे, नहीं तो लड़ेंगे नहीं, अगले दिन एक दिन लड़ के आएंगे, अगर बहुत हो गया, बच गया इस दिन, कल गोली लग जाएगी, क्या फायदा जाकर। तो वो बोलते नहीं नहीं, लड़ो, देश के लिए मरना है, तो फिर ठीक है, फिर चले जाते। तो ऐसे सैनिकों को उत्साह दिलाने इनको वंदी जन कहते। तो इनका जन्म होता है। और अगर कोई क्षत्रिय कुल की स्त्री किसी शूद्र से विवाह करती, सॉरी वैश्य कुल, हम लोग क्षत्रिय की बात कर रहे थे, हाँ क्षत्रिय जब वैश्य कुल का पति हो और क्षत्रिय कुल की पत्नी हो तो वंदी जन होते हैं। अब शूद्र कुल का पति हो और पत्नी वैश्य क्षत्रिय हो तो उससे जो जन्म होता है उसको निषाद कहते हैं। ये मछली पकड़ने का कार्य इत्यादि जो करते हैं निषाद उनको कहा जाता है। तो आप रामायण में देखते हैं निषाद राज गुह इत्यादि उनका वर्णन आता है। तो जो निषाद जाति होती है पूरी, वो शूद्र पति होता है और क्षत्रिय कुल की पत्नी होती है, तो उनसे जो जन्म होते हैं वो निषाद कहलाते हैं। तो या तो पत्नी ब्राह्मण कुल की हो गई क्षत्रिय, और वैश्य कुल, समझिए वैश्य कुल की पत्नी है, विवाहिता है और उसका विवाह शूद्र से हो रहा है, तो उनको आयोगन कहा जाता है। वो अयोगव आयोगव कहलाते हैं। और वे लोग ज्यादातर कारपेंटर का कार्य करते हैं, फर्नीचर बनाना इत्यादि। तो ये समाज में वर्णन था। देखिए ब्राह्मण ये कार्य नहीं किया करते थे, क्षत्रिय नहीं करते थे, वैश्य नहीं करते थे, क्योंकि कई बार आया है वैश्यों का कार्य क्या है, वैश्यों का कार्य गोरक्षा वाणिज्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्य। अरे तो फिर आपके घर का कारपेंटर कौन बनाएगा, बर्तन कौन बनाएगा। तो उन लोगों के लिए ये मिश्र जातियां थी, तो ये लोग वो कार्य किया करते थे। और आगे भीष्मदेव ये भी कहते हैं कि इनको भी अपनी ही जातियों में विवाह करना चाहिए। जैसे कोई सूत है, देखिए कहां तक जा रहे हैं, कितना अंदर, अब उसका विवाह किससे होगा। तो देखिए शास्त्र कितने विस्तार से सब कुछ दिया गया है। तो पहले तो ये हो गया, अब प्रश्न आएगा कि ठीक है अगर कोई सूत जाति का है तो वो किससे विवाह करेगा, ब्राह्मणी से करेगा या क्षत्रिय से करेगा या वैश्य, नहीं उसको तो उनसे करना ही नहीं, उसको सूत जाति से ही करना है विवाह। और उसमें भी अगर वो मिक्स हो जाते हैं उन जातियों में भी निम्न जाति से, तो और वर्ण संकर उत्पन्न होते। अब इतने विस्तार में सारी चर्चा हमने उन्होंने कर दिया, भीष्मदेव ने वो भी बता दिया कि क्या क्या होता है। तो ऐसे ये जो वर्ण संकर हैं समाज में उत्पन्न होते, तो इनका वर्णन इस अध्याय में नारद मुनि करते हैं कि किस तरह से। और एक शब्द अंतेवसाई, इसमें प्रभुपाद भी उसको तात्पर्य में समझाते, नारद मुनि करते हैं कि वे लोग वर्ण संकरों का वर्णन करते। तो अंतेवसाई वो होते हैं कि जब निषाद कुल का व्यक्ति किसी चांडाल निषाद कुल की स्त्री किसी चांडाल कुल के व्यक्ति से विवाह करती है तो जो प्रकट होते हैं उनको अंतेवसाई कहते हैं, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया। तो ऐसे बहुत सारे विस्तार में समझाया है। तो विशेषता ये क्यों वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि, तो ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि समाज में एक व्यवस्था चाहिए, वर्णाश्रम धर्म आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसको स्थापित करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म को। क्यों करना चाहिए? व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, गुणों के अनुसार कार्य में लगे और उन कार्यों को करते हुए भगवान की भक्ति करे। क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? केवल समाज में अच्छी व्यवस्था लाना नहीं, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य नहीं है। वर्णाश्रम का उद्देश्य है विष्णु आराध्यते, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। तो इसीलिए ये जो समाज की व्यवस्था है ये इस तरह बनी है कि इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो वर्ण संकर जब उत्पन्न होते हैं तो समाज से धर्म लुप्त हो जाता है, पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। और आजकल के समय में जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें पता ही नहीं कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, तो सारे जो उत्पन्न हो रहे कुछ पता नहीं क्या, और इसीलिए समाज में अराजकता है। आवश्यकता है वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने की, एक ऐसा समाज जहां सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए, अपने अपने कर्तव्य को करते हुए सब लोग भगवान की ओर बढ़ सके एक साथ। वर्णाश्रम पद्धति इस तरह है, जैसे हम भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं तो हम प्रयास करते हैं तो एक दो भक्त कोई बन जाते हैं, तीन चार कोई बन जाते हैं, लेकिन वर्णाश्रम पद्धति ऐसी है कि एक साथ जो जहां है वो अपने कर्तव्यों को करते हुए भगवान की ओर जाते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था है वर्णाश्रम पद्धति। इसीलिए प्रभुपाद बारंबार चाहते थे कि वर्णाश्रम स्थापित हो। प्रभुपाद के पहले आंदोलन के प्रभुपाद ने कई अपने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के स्तर दिए हैं। पहले स्तर पर ये था कि ठीक है हम लोग मंदिर खोलें, ग्रंथों का वितरण हो, प्रचार हो, लेकिन उसके आगे जो चीज हम प्रचार कर रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, उसको दिखलाने के लिए वर्णाश्रम स्थापित हो। हम दिखलाएं, नहीं तो केवल बात करेंगे और हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहेंगे, सारी सुविधाओं के साथ रहेंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे। तो उसको दिखलाने के लिए प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम स्थापित हो। अगला उनका जो आंदोलन का अगला भाग है और वो है वर्णाश्रम, कैसे हम लोग इस वर्ण को, आश्रम को, ब्रह्मचारी हों समाज में, सन्यासी हों, गृहस्थ हों, वो अपने कर्तव्य को जाने, ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य को जाने। इसीलिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। अगर हम बड़े व्यापक तरीके पे ना कर पाए कि हम पूरे समाज में, पूरे दुनिया में, हम कम से कम हमें अपने स्तर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हरेक मंदिर जो प्रभुपाद ने स्थापित किया, ये जो प्रभुपाद के अनुयायी स्थापित कर रहे हैं, उस मंदिर में इस व्यवस्था को लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इतने स्तर पर ला सकें और हर मंदिर में एक अलग वर्णाश्रम व्यवस्था हो सके, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, गुण के अनुसार व्यक्ति कार्य में लगा है और सभी में बड़ा मेल है और उद्देश्य विष्णु आराध्यते, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, तो फिर समाज में ये जो अराजकता है वो बंद हो जाएगी। तो कैसे हम लोग अपने स्तर पर इन वर्णाश्रमों को स्थापित कर सकते हैं? तो अपने स्तर पर जैसे अलग अलग आश्रम होते हैं, कोई ब्रह्मचारी हैं, कोई गृहस्थ हैं, कोई वानप्रस्थ हैं, कोई सन्यासी हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को समझना चाहिए कि ब्रह्मचारी गृहस्थों के संतानों की तरह है, तो उनको अपना माता पिता मानना चाहिए। गृहस्थों को ब्रह्मचारियों को अपना पुत्र मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी है ये तो मेरे अधीन रहना चाहिए, या ब्रह्मचारियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि तो गृहस्थ पतित जीव है, हम लोग देखो हमने सारा त्याग कर दिया, ये अभी भी घर में फंसा हुआ है, ये पतित जीव आत्मा। नहीं, उनको अपने माता पिता की तरह मानना, उनको अपने संतानों की तरह। तो गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों को अपने संतान की तरह पालन करना चाहिए और इन तीनों को गृहस्थों की ओर बड़े आदर से देखना चाहिए। तो ऐसी समाज की एक व्यवस्था जहां एक दूसरे को सहयोग हो, जहां समाज में ब्रह्मचारी हैं उनका संरक्षण गृहस्थ करे। कैसे संरक्षण कर सकते हैं गृहस्थ? उनकी सुविधाओं को प्रदान करके, उनके जो व्रत हैं उनको संभाल कर। जैसे ब्रह्मचारी जो व्रत लेते हैं कि वो विवाह नहीं करेंगे, वो स्त्रियों का संग नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के अध्ययन करेंगे इत्यादि, उन व्रतों को संभालना चाहिए गृहस्थों को। ये देखना चाहिए कि हमारी वजह से ऐसा कुछ ना हो कि ये जो ब्रह्मचारी है इसके व्रत में बाधा आए। और ब्रह्मचारियों को भी ये कर्तव्य है कि वो देखें कि गृहस्थों को ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान दे सकें, उनकी आध्यात्मिक प्रगति करा सकें, ये बतला सके उनको कि वो जिस समय जिस स्थान पर हैं उनको जो कर्तव्य करने हैं वो करें, लेकिन उद्देश्य को नहीं भूलें। तो आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखना ब्रह्मचारी सन्यासियों का कार्य है। उन वातावरण को बनाए रखने के लिए जो सुविधा चाहिए उसको प्रदान करना ये गृहस्थों का कार्य है। तो अगर इस तरह से मिलजुल कर, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं प्रभुपाद ने एक घर बनाया जिसमें सारी दुनिया रह सकती है, लेकिन हम लोग एक मंदिर में एक घर नहीं बना पाते हैं कि जिसमें मंदिर के एक 50-100 भक्त रह सके। तो इस व्यवस्था से हमें रखना है। और ये व्यवस्था कब आएगी? जब हम अपने अपने हृदय में इन इन चीजों को जाने, इस ज्ञान को जाने कि उद्देश्य क्या है, और एक दूसरे को सहयोग करते हुए। कई बार देखा जाता है कि जब हम लोग मंदिर में होते हैं तो जैसे हम अपने घर में आचरण करते हैं ऐसा मंदिर में नहीं करते। हमारी संतान अगर कोई गलती कर देती है हम कहते ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है बच्चा है मेरा, उसको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, थोड़ा डांटते हैं डपटते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं कर देते। लेकिन जब हम लोग मंदिर में ये देखते हैं तो मंदिर में सबको अपनी संतान नहीं देखते, कोई गलत करता है हम लोग इसने ऐसा किया। हमने देखा बड़े बड़े मंदिरों में ये सब होता है, बड़ा कांग्रीगेशन है, किसी ने कुछ कर दिया तो बड़ा हंगामा हो गया। नहीं, उसको भी बच्चे की तरह संभालना है कि ठीक है कोई गलती हो गई बिठाओ उसको समझाओ, ये कार्य बहुत आवश्यक है। तो इससे हमारा जो समाज है, जो प्रभुपाद का विजन था, जो प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हरेक के अंदर दोष है, कलेर दोषो निधे राजन, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं है। केवल हमें अपना दृष्टि बदलनी है, दोषों को नहीं देखकर उसके गुणों को देखकर उसको भगवान की ओर ले जाना है, अन्यथा कलयुग में प्रचार हो ही नहीं सकता। अगर हम ये सोचें कि प्रचार वो करेगा या भक्ति वो करेगा जो पूर्ण शुद्ध है, जिसके अंदर एक भी दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण है, आप प्रचार कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा कलयुग में ऐसा, कलयुग है। इसीलिए इस चीज को समझते हुए इस व्यवस्था को लाने का प्रयास करना, एक ऐसी व्यवस्था जो प्रेम पर आधारित हो, ऐसी व्यवस्था नहीं जो जो स्वार्थ पर आधारित है कि मुझे क्या मिल सकता है, मैं मंदिर से जुड़ रहा हूं, मैं एक भक्त बन रहा हूं, मुझे क्या मिल सकता है, ये व्यवस्था नहीं। प्रेम पर आधारित व्यवस्था, निस्वार्थ भावना पर आधारित व्यवस्था, लोगों को भगवान से जोड़ने की कामना पर आधारित व्यवस्था, इस व्यवस्था को अगर हम लोग लाएंगे तो समाज में हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। और अगर केवल हम लोग अपने अपनी चीजों को पकड़कर आपस में झगड़ेंगे, दूसरा जो बाहर से आएगा वो क्या सोचेगा, क्या आवश्यकता है इस मंदिर में जाने की जहां लोग आपस में झगड़ रहे, वैसे भी मेरे घर में झगड़ा होता ही है तो मैं वहीं पर कर लेता हूं, है ना। लोग प्रेम ढूंढने के लिए आते हैं मंदिर, झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं, वो तो बहुत है बाहर की जगत, उसकी कमी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उनको वो नहीं दे पाएंगे, वो एक व्यवस्था, वो एक उदाहरण नहीं दे पाएंगे, तो फिर कोई जुड़ेगा नहीं भक्ति से। जैसे कई बार वो एक उदाहरण दिया है कि एक एक मठ था, 200 भक्त थे, धीरे धीरे सारे भक्त चले गए, 5 भक्त रह गए केवल। तो एक व्यक्ति आए, एक साधु आए, उन्होंने चर्चा की कि क्या करें महाराज बताइए, इतने लोग थे अब कोई नहीं रह गया, कोई रहता नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो चिंता मत करो, बहुत जल्दी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि मसीहा आ चुका है, मतलब एक भगवान का शुद्ध भक्त हमारे बीच में है। वो अपने आप को बता नहीं रहा है कौन है, लेकिन वो है, हो सकता है इस मठ में हो, बस इतना कह के चले गए। अब वो मठ के वासी 5 लोग हैं, वो सोच रहे कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, मैं इसके प्रति अपराध कर दूंगा, पता चले ये भगवान का शुद्ध भक्त है, मसीहा बचाने आया है सबको। तो सब आपस में ये सोच करके कहीं ये तो नहीं है, सबसे अच्छा आचरण करने लगे, कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं कि अरे इसको कैसे करूं मैं, ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, दूसरे को कैसे, और एक दूसरे को इतना अच्छा व्यवहार हो गया कि जब कुछ समय बाद वो साधु आए तो उन्होंने देखा फिर से भर गया है 150-200 लोग, और उस समय उन्होंने पूछा कि आपको पता चला कि कौन मसीहा है, आपने उस समय बताया था आपको पता है, तो साधु सोच लगा कि अभी बता देंगे तो तकलीफ हो जाएगी केवल उसने कहा ऐसा तो किससे बदलाव हुआ, बदलाव इससे नहीं हुआ कि मसीहा आया, बदलाव उनके आचरण में हो गया, हरेक से प्रेम पूर्वक आचरण शुरू हो गया और अपने आप भक्तों की संख्या बढ़ गई। तो यही प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग मेरे प्रति प्रेम कैसे दर्शा सकते हो, आपस में सहयोग करके, ये बहुत आवश्यक है। और इस चीज को हम भूल जाते हैं, हम मंदिर बनाना चाहते, बड़े बड़े मंदिर बना भी लेते हैं, बड़े कांग्रीगेशन हो जाता है, 1000 लोग हैं हमारे कांग्रीगेशन में, 2000 भक्त दीक्षित हैं, बड़ा मंदिर है, लाखों रुपया आ रहा है, इस एक सीधी सी बात को नहीं जान पाते। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। तो इसीलिए जब समाज की व्यवस्था की बात आ रही है तो हमें जानना चाहिए, हमें प्रेम पर आधारित समाज को बनाना है, ऐसा समाज जहां लोग उस प्रेम को देख सकें। इसीलिए प्रभुपाद भगवद्गीता के श्लोक को बहुत बार कोट किया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा है और उससे कोई गलती हो भी जाती है, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। प्रभुपाद कहते थे भक्ति में लगा है ना, बाहर वाले से तो अच्छा है, तो उसको आपको साधु समझना है, तो कैसे उसको संभालना है वो सीखना चाहिए। हमारा स्वभाव होता है किसी ने कुछ कर दिया बस पुलिस बनकर उसको डांटना है, नहीं, पुलिस बाहर का काम है, हमें समझाना, हमें प्रयास करना है, वो जाए नहीं। प्रभुपाद एक भक्त अगर आंदोलन से जाता था, प्रभुपाद आंखों में आंसू लाकर उसको बोलते थे जाओ मत, क्या जरूरत थी प्रभुपाद को, हजारों भक्त थे उनके, एक चला जाए क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या हो जाएगा एक, लेकिन प्रभुपाद को करुणा थी उस एक भक्त के लिए, अपने लिए नहीं। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे शिष्यों में से एक नंबर कम हो जाएगा, अभी मेरे 10,305 शिष्य अगर ये चला गया तो 10,304 रह जाएंगे, मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, नहीं, कोई चिंता नहीं थी उन्हें चिंता थी कि ये जो भक्त है, ये 305 में से जो पांचवा नंबर का भक्त है, अगर ये चला गया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये करुणा थी उसकी। ऐसी करुणा पर आधारित समाज चाहिए, और इसीलिए प्रभुपाद इतना बढ़ा सके अकेले व्यक्ति, क्योंकि उनका आधार प्रेम था, उनकी आधार करुणा थी, उन्होंने सब तरह के लोगों को संभाला। तो इसी तरह इस समाज को हमें बनाना है, तो हर मंदिर इस्कॉन का एक ऐसा समाज बने जो एक उदाहरण हो बाहर के लोगों के लिए, और उसके लिए हरेक को मिलकर कार्य करना है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। गृहस्थ अपने कर्तव्य को करें, ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य को करें। ब्रह्मचारियों का कर्तव्य क्या है, बड़ी कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करें, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करें, भगवान की सेवा करें, निम्न से निम्न सेवा करें भगवान की, निम्न भगवान की कोई निम्न सेवा होती ही नहीं है, भगवान की सेवा सारी श्रेष्ठ है। छोटी छोटी सेवाएं भी भगवान की करें, ग्रंथ वितरण करें, मंदिर मार्जन करें, भगवान के विग्रह की सेवा करें, सब उनकी सेवा। गृहस्थ धन कमाएं और इस संस्थान को या ब्रह्मचारियों के जीवन को अच्छी तरह चलाएं, और जो सन्यासी वानप्रस्थ हैं वे लोग प्रचार में लगें। तो इसीलिए ये कार्य अगर हम लोग करेंगे तो हर मंदिर इतना सुंदर व्यवस्था होगी कि भगवान को स्मरण करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज जो हम लोग मेहनत करते हैं कि कब स्मरण आता है, हम दिन भर सेवा करते हैं भगवान की, क्या स्मरण आता है बताइए, भगवान का हमारा स्मरण क्या रहता है, अरे कल वो भक्त आएगा कि नहीं, वो नहीं आएगा तो मुझे सुबह अल्टर में जाना पड़ेगा, ये हमारा स्मरण है कृष्ण का, कैसी भक्ति है ये। भक्तों को ये सोचना चाहिए कि काश वो कल नहीं आए तो मुझे अवसर मिल जाएगा भगवान की सेवा का, लेकिन हमारा उल्टा है, हम लोग बोलते प्रभु जी कल थोड़ा मैं नहीं आऊंगा आप संभाल लेना, और जिसको बोलते हैं संभाल लेना वो बोलते हैं क्या राइट, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या है, तो बताइए कृष्ण कहां मिलेंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए हमें, हमारा भाव सही में कि ये होना चाहिए कि काश कल वो नहीं आए और मुझे अवसर मिल जाए, मैं जाकर भगवान को उठा सकूं, मैं जाकर भगवान की पूजा कर सकूं, ये भाव चाहिए। ये भाव नहीं कि खैर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए ना। तो ये कब होगा? जब हम सब मिलकर करेंगे, करुणा हो, प्रेम हो, भगवान को स्मरण। तो जब उस आधार पर होगा तो अपने आप भगवान का स्मरण हो जाएगा, अपने आप हम भागेंगे भगवान की सेवा के लिए। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां कुछ गृहस्थ भक्त सेवा करते हैं और उनको बहुत मुश्किल से वो सेवा मिलती है। हमने देखा है कि वो कहीं भी जाए, मान लीजिए कि मंगलवार को उनकी ऑल्टर सेवा है, तो वो कहीं भी बाहर भी होते हैं तो भाग कर सोमवार की रात तक पहुंचते हैं, सारे अपने बाकी चीजें कैंसिल करके कि हमें मंगलवार मेरी सेवा है, मुझे पहुंचना सुबह। ऐसे नहीं कि वहां से फोन कर देते कि प्रभु जी आप संभाल लेना। भगवान की सेवा को इस तरह करना चाहिए। तो इसीलिए एक ऐसे समाज की स्थापना को हम लोग प्रारंभ करें, आपस में मिल। क्या कठिनाई है एक दूसरे से प्रेम करने में, क्या कठिनाई है? हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, हमारी इच्छाएं, यही है कठिनाई, और कोई कठिनाई नहीं है। इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, आधार बनाएं उसको इस समाज का, और इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा कि सारे समाज का आकर्षण केंद्र बनेगा और अपने आप लोग आकर्षित होंगे कृष्ण भावनामृत की ओर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय काफी हुआ, फिर भी आज छुट्टी है ना? हाँ, कोई प्रश्न है?